તારીખ 14/7/1992 પૂજ્ય બેનશ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 197 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 56
राग से भिन्न होकर के और ज्ञान को अपने आप में अंतर्मुख होकर के भिन्नता हो सकती है, इसके सिवा भिन्नता होने का कोई दूसरा प्रकार नहीं है। इसलिए जो ज्ञान की अंतर्मुखी पर्याय हुई उसी को यहाँ प्रज्ञाक्षणी कहने में आई है। कोई ऐसा नहीं समझे कि ये मात्र दो पर्याय के बीच की बात है। इसलिए राग को विभाव कहा और ज्ञान को स्वभाव कहा कि ये कार्य तो स्वभाव और विभाव के बीच में विभाग करने का है और वो ज्ञान की पर्याय से कार्य करती है। स्वभाव और विभाव में विभाग करने का, भेद करने का कार्य ज्ञान की पर्याय करती है। उसमें दृष्टांत दिया कि राग और ज्ञान एक साथ जीव की एक पर्याय में है तो भिन्न कैसे हो सकता है। तो सुवर्ण पाषाण की तरह सोना और पत्थर के रजकण मिश्रित है सुवर्ण पाषाण में, फिर भी उसमें सोना पर जिसकी नजर है वो दो बात अलग अलग ज्ञान में पहले ले लेता है। इसके सामने ये प्रश्न चला के सोना चमकता है ना, इसलिए वो अलग नजर में आता है, लेकिन यहाँ कैसे करना, उसका उत्तर चलता है। अभी जो चलेगा वो इसका उत्तर चलता है कि यह ज्ञान भी चमकता ही है ना, ज्ञान भी चमकता है, विभाव भाव नहीं चमकते, किंतु सर्वत्र ज्ञान ही चमकता है, ज्ञात ज्ञात होता है। ज्ञान की चमक चारों ओर फैल रही है, ज्ञान की चमक बिना सोने की चमक काहे में ज्ञात होगी। तो क्या कहा, ज्ञान की चमक मैंने क्या प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश कहते हैं। तो एक प्रकाश ऐसी चीज है कि अंधेरे में प्रकाश है वो अपने आप ही अपने को, अपनी मौजूदगी को प्रसिद्ध कर देता है। प्रकाश क्या काम करता है, दृष्टांत के रूप में सोने की चमक, तो सोने के रजकण में जो चमक थी उसने क्या काम किया, सोने को प्रसिद्ध कर दिया। ऐसे ज्ञान अपने आप को प्रसिद्ध करता है और सर्वत्र प्रसिद्ध करता है। कहाँ प्रसिद्ध करता है, सर्वत्र अपनी मौजूदगी जो है वो बिना ज्ञान कैसे प्रकाश में आएगी। तो ज्ञान हर वक्त सर्वत्र चमक रहा है, मतलब इसकी प्रसिद्धि हो ही रही है, ज्ञान से अपनी प्रसिद्धि हो ही रही है। परिस्थिति के अनुसार बात कुछ ठीक है, किंतु हम क्या ज्ञानी नहीं बन सकते? हम ज्ञानी नहीं है तो ज्ञानी बन तो सकते हैं कि बन भी नहीं सकते? जैसे कोई कहेंगे कि हम तो बीमार हैं इसलिए कमजोर है, तो क्या इसका मतलब हम तंदुरुस्त हो ही नहीं सकते? क्या बीमार है वो खाना पूरा नहीं खा सकते, या परहेज में उसको खाना पूरा खाने की परहेज है, कम खाना पड़ता है, हजम कम होता है, तो कमजोरी है और खाना भी कम खाए तो क्या हमेशा कमजोर रहेंगे? कि कम खाते हैं वो भी तंदुरुस्त रहने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, और ज्यादा खाएंगे तो भी ताकत बढ़ाने के लिए? हाँ, ये प्रश्न अवश्य हो सकता है कि जब हमें ज्ञान की चमक नहीं समझ में आती तो कैसे ज्ञान की चमक को समझें? क्या यह प्रश्न हो सकता है कि इस हमारी वर्तमान अवस्था में चाहे अज्ञान वश को हो, कैसे भी परिस्थिति वश को हो, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की चमक हमें पकड़ने में नहीं आती है, तो हम क्या करें? है ना? तो इस प्रश्न के उत्तर में यह कहना चाहिए कि ज्ञान की चमक और प्रकाश हमें पकड़ में नहीं आता है, उतना प्रकाश कहाँ हुआ? मोस्ट प्रैक्टिकल बात है, उतना प्रकाश कहाँ हुआ? जैसे किसी ने ये कहा कि हम अंधे हैं, अंधे हैं इसलिए हमें कुछ नहीं दिखता, तो कुछ नहीं दिखता, अंधेरा तो दिखता है, तो नहीं दिखता है वो बात कह रही, अंधेरा दिखता है उतनी बात तो दिखने में तो आई ने, ऐसे ज्ञान का प्रकाश हमारी समझ में नहीं आता है, उतना प्रकाश कहाँ है? थोड़ा अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान में गौर से देखना है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये झोरी जो बनता है वो कैसे बनता है? जो झोरी बनने वाला ऐसा कहता है, कहेगा कि हम तो झोरी नहीं है, हम कहाँ से पता, हमको कहाँ से हीरा का पता चलेगा, क्या कौन सा सच्चा हीरा है कौन सा? तुम देखने का प्रयास तो करो, हीरे को बार बार देखने का प्रैक्टिस तो करो, तुमको हीरा में जो भी खूबियां हैं वो समझ में आने लगेगी। ऐसा ही अवलोकन का प्रयोग ऐसा ही होता है कि ज्ञान अपने आप को भी अवलोकन में लेता है और अपने में जो भी पर पदार्थ का प्रतिभास होता है, प्रतिबिंब होता है, उसको भी अवलोकन में लेता है, और ये अवलोकन जितना बढ़ता है उतनी सूक्ष्मता भी बढ़ती है, जितनी जितनी सूक्ष्मता बढ़ती है उतना उतना स्वभाव के विषय में स्वभाव और विभाव क्या चीज है, राग में विभाव स्वभाव क्या है, ज्ञान में आत्म स्वभाव क्या है, वो समझ में आने लगता है। सिर्फ पूछने से, उत्तर सुनने से, प्रश्न का उत्तर सुनने से इतना समझ में नहीं आएगा, और पढ़कर विचार करने से भी इतना समझ में नहीं आएगा जितना अवलोकन से समझ में आएगा। वो भेद ज्ञान में लेना है, इसके प्रदेश की व्याप्ति में भेद ज्ञान करना, मैंने राग में नहीं व्यापक रूप हो, शरीर आदि में भी व्याप्ति व्यापक रूप में नहीं है। लेकिन यहाँ बात रही है ज्ञान की, चमक की बात चल रही है कि ज्ञान भी चमकता है और सर्वत्र चमकता है। ज्ञान की चमक बिना सोने की चमक काहे में ज्ञात हुई? सोना चमकता है ऐसे कहने वाले ने ज्ञान की चमक को प्रसिद्ध कर दी। सोना को तो पता ही नहीं है, मैं चमकता हूं ये सोना को पता है क्या? तो सोना चमकता है वो किसने कहा कि ज्ञान की चमक में ये सोना चमकता है? विश्व में ये प्रकाश है ना, ये बत्तियों का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश होता है, चंद्र का प्रकाश होता है, हीरे का प्रकाश होता है, सोना का प्रकाश होता है, लेकिन ये सभी प्रकाश का प्रकाशक कौन है? सूर्य का प्रकाश गर्मी समेत होता है, चंद्र का प्रकाश शीतल होता है, ठंडा होता है चांदनी में, इसको कौन प्रकाशता है? प्रकाश को कौन प्रकाशता है? जो प्रकाशक का प्रकाश का भी जो प्रकाशक है, ये ज्ञान का प्रकाश है, आत्मा का ये प्रकाश है। और कितना प्रकाश है आत्मा में? गुरुदेव कहते हैं कि प्रकाश का पूर है तेरे में। प्रकाश को उर्दू में नूर कहते हैं। क्या? उर्दू भाषा, उर्दू जबान में प्रकाश को नूर कहते हैं, और आत्मा में नूर का पूर है। गुरुदेव कहते थे कि आत्मा में नूर का पूर है, चैतन्य नूर का पूर। बहुत है, अनंत है, सामर्थ्य की तो बात कोई हिसाब किताब की नहीं रह सकती। कितना सामर्थ्य, सामर्थ्य को देखते, देखने वाले को सामर्थ्य ऐसा है कि सामर्थ्य को देखते देखने वाले एक दफे तो थम जाते हैं कि क्या चीज है ये, ऐसी चीज है सामर्थ्य। बहुत अच्छी पद्धति लिया है समझाने के लिए, बहुत अच्छी पद्धति लिया है। और भी दृष्टांत देते हैं कि जैसे सच्चे मोती और खोटे मोती इकट्ठे हो एक जगह पर, थोड़े मोती हो उसमें कुछ सच्चे भी हो, उसमें कोई खोटे भी हो, तो मोती का पारखी उसमें से सच्चे मोतियों को अलग कर लेता है, जो सच्चे मोती को परख सकता है उसको पारखी कहते हैं। तो क्या कर सकता है कि सच्चे मोती को अलग ले लेगा, और ऐसे उसी प्रकार आत्मा को प्रज्ञा से ग्रहण करना, प्रज्ञा मैंने ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय से पूरा आत्मा को ग्रहण कर लेना, ज्ञान की पर्याय से ज्ञान की पर्याय को ग्रहण नहीं करना, ज्ञान के पर्याय से पूरा आत्मा को ग्रहण कर देना। कभी चोर को देखा है? प्रश्न ये निकलेगा कि हमने आत्मा देखा ही नहीं, कैसे कैसे हम ग्रहण कर ले। चोर को कभी देखा है? नहीं देखा। फिर घर में कोई छिपा हुआ आदमी का एक अंगुली दिख जाए तो है, क्या देखा? अंगुली देखा या चोर को देखा? अंगुली नहीं देखी, पूरा आदमी को देखा है। अवयव से अवयवी का ज्ञान हो जाता है। श्रुत ज्ञान में ऐसी ताकत है कि अवयवी से पूरा अवयव का ज्ञान हो जाता है। गुड़ लेने को जाते हैं तो क्या पूरा गुड़ खा जाते हैं? थोड़ा सा चखते हैं, चखते कितना? थोड़ा कितना? ऐसे प्रज्ञा से ग्रहण करना कि जो जानने वाला है तो मैं हूं। जानने की जो अवस्था है ये कोई आकाश में अदर है क्या? हम लोग ऐसा स्वाध्याय इस ढंग से करते हैं कि हमको तो पर्याय दिखती है, द्रव्य नहीं दिखता है। क्या कहते हैं? पर्याय हमें दिखती है लेकिन द्रव्य नहीं दिखता है, है? ये किसमें देखते हैं? ज्ञान में दिखते हैं तो और जगह कहीं दिखते? ज्ञान में नहीं दिखता है कि ज्ञान में यही दिखता है? हीरा चमकता है, कोई ऐसा कह सकता है क्या कि चमक को हम देखते हैं हीरा को नहीं देखते? क्या हीरा चमक 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 हो रहा है? चमक तो पर्याय है हीरा को। कोई ऐसा कहेगा कि चमक की पर्याय दिखती है लेकिन हीरा को दिखता ही नहीं है? ऐसा कभी बनता है क्या? वहां इधर कल्पना कर लेते हैं, अकेली पर्याय की कल्पना कर लेते हैं कि जो पर्याय अकेली कभी रह ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। बिना पदार्थ कोई पदार्थ की पर्याय कहीं पाई जाती है क्या? पाई जाती है तो बताइए, एक भी दृष्टांत तो दे दीजिए कि एक जगह तो बिना द्रव्य अकेली पर्याय हमने देखी, बनी नहीं सकता। और द्रव्य को देखने से यही एक रास्ता है, एक यही चैनल से द्रव्य को देख सकते हैं। अनित्य से नित्य का ज्ञान होता है, अनित्य पर्याय नित्य को दर्शाती है। क्या? क्यों? अनित्य अनित्य को नहीं दर्शाता और नित्य भी नित्य को नहीं दर्शाता, अनित्य नित्य को दर्शाता है। ऐसी बात है। सुगानी जी की चर्चा में द्रव्य से प्रकाश में ये बात चली है त्रिदृष्टि प्रकाश 125 का वचनामृत है। प्रश्न किया कि वर्तमान ज्ञान वेदन ख्याल में आता है, क्या ज्ञान की पर्याय ख्याल में वर्तमान में आती है? वैसे त्रिकाली सत ख्याल में क्यों नहीं आता है? हमको त्रिकाली आत्म स्वरूप का ज्ञान करना है, हमको एक समय के पर्याय का ज्ञान नहीं करना है। प्रश्नकार का ये अभिप्राय है। उघाड़ में तो युक्ति आदि से आता है, जैसे हीरा का दृष्टांत लिया युक्ति में, कि हीरा की चमक दिखती है तो हीरा समेत दिखती है, हीरा नहीं दिखे और हीरा की चमक दिखे ऐसा तो बनता नहीं है। लेकिन अंदर में हमारा आत्मा अंदर से क्यों नहीं दिखता है? युक्ति से तो बात बैठ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली अंदर में क्यों नहीं दिखता है, ये प्रश्न चला है। बहुत ये प्रश्न अच्छा चला है। सारे द्रव्य दृष्टि प्रकाश में पर्याय से द्रव्य का ज्ञान कैसे होता है, इस विधि का यहां पर निर्देश है। वरना तो सोगानी जी की बात करने की पद्धति ही ऐसी थी कि द्रव्य का नाम लो तो अपरिणामी कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्याय रहित है, अपरिणामी है। एक इसी जगह ये बात कही है कि पर्याय से द्रव्य जाना जाता है, तो उसी जगह किया है, उत्तर दिया है कि जो उघाड़ में न्याय से ख्याल में आया है तो ख्याल वाली ज्ञान पर्याय भी कोई आधार पर खड़ी है कि बिना आधार खड़ी है? तो वो भी कोई आधार पे, बिना वस्तु वो कोई पर्याय हो सकती नहीं, बिना वस्तु अवस्था हो ही नहीं सकती। अवस्था तो कोई पदार्थ की होती है, ज्ञान की पर्याय को आत्म वस्तु का आधार है। आकाश में नहीं हो रही है, इधर जो हो रही है वो आत्म वस्तु का आधार से हो रही है, इसलिए वो ज्ञान की पर्याय द्वारा पूरा आत्मा का पत्ता चल जाता है। जो इधर बात अपने चलो स्वाध्याय में आई, वो आधार वाली वस्तु है वो क्या है, ऐसे देखकर और आधार वाली शक्ति में ही थंब जाना, प्रसर जाना, अहमपना करके ग्रहण कर लेना, वही अपना स्वरूप है, वही आत्मा है, ऐसे एक प्रयोग करना, यानी कोशिश करना, ऐसा एक कोशिश करना। ऐसे यहां कहते हैं कि प्रज्ञा से ग्रहण करना, आत्मा को प्रज्ञा से ग्रहण करना कि जो जानने वाला है सो मैं हूं, मेरे में मेरे सिवा कुछ हो कुछ और है नहीं, निज में निज है, निज में पर है नहीं। लेकिन कब? कि निज में निज को देखने की दृष्टि से देखे तब, निज में निज को देखने वाली दृष्टि से निज को देखना है तो निज में सिवा अपने आत्मा सिवा कुछ दिखने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरे का अस्तित्व नहीं है उसमें। मेरे में मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, इसलिए मेरे में मेरे सिवा कुछ नहीं होने से मेरे सिवा कुछ दिखता भी नहीं, यही मेरी दृष्टि है। निज में पर को देखने वाली दृष्टि झूठी है, क्योंकि निज में पर है ही नहीं। निज में कौन है? अपन अकेले हैं, कोई दूसरा है ही नहीं इधर इधर। तो निज में निज को देखने वाली दृष्टि से देखे तो निज देखने में आता है, और निज में पर को देखने वाली दृष्टि से निज को भूलना पड़ता है, अपने खुद को भूल जाते हैं कि मैं हूं कि नहीं हूं, ये परिस्थिति होती है। इसलिए कहते हैं कि जो जानने वाला है सो मैं हूं, और जो देखने वाला है सो मैं हूं। इस प्रकार उपयोग सूक्ष्म करके, देखो बार बार ये कहते हैं, उपयोग को सूक्ष्म करके, ये विषय स्थूल उपयोग का नहीं है। वैसे ही तत्वज्ञान का विषय तो सूक्ष्म उपयोग का ही है, उसमें भी आत्म स्वभाव को ग्रहण करना जहां होता है वहां तो स्वभाव सूक्ष्माति सूक्ष्म होने से सूक्ष्म उपयोग बिना ग्रहण हो सकता नहीं है। इस प्रकार उपयोग सूक्ष्म करके आत्मा को और विभाव को पृथक किया जा सकता है। अगर उपयोग को सूक्ष्म करें तो आत्मा को और विभाव को भिन्न भिन्न, पृथक मैंने भिन्न भिन्न कर सकते हैं, किया जा सकता है। स्थूल उपयोग में तो एक जुदा होने पर भी एक रूप अनुभव में आएगा, और उपयोग सूक्ष्म होने से जो भिन्न है वो भिन्न अनुभव में आ जाएगा। स्थूल उपयोग को सूक्ष्म करना हो तो अपने रुचि को बदलना पड़ेगा। पर पदार्थ की रुचि उपयोग को स्थूल करती है, और आत्मा की रुचि उपयोग को सूक्ष्म करती है, यही कहेंगे आगे, तो आखिर में वही कहेंगे। जिसकी रुचि पर पदार्थ में जितनी अधिक है उतना उपयोग ज्ञान का स्थूल हो जाता है, इतना उपयोग ज्ञान का स्थूल हो जाता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जानने की विचार करने की उसमें बहुत शक्ति है। कितनी शक्ति है? बहुत शक्ति है। वो शक्ति क्यों कम हो जाती है? कम इसलिए हो जाती है कि पर पदार्थ की रुचि बढ़ जाती है। तब एक बात करने लायक करता हूं कि हम मनुष्य है वो मन वाले प्राणी हैं, और ये गाय भैंसा चकली डेढ़का मेंढक हाथी घोड़ा सिंह बाघ बकरी ये सब भी मन वाले हैं, लेकिन विचार शक्ति जितनी मनुष्य में होती है उतनी पशु पक्षी में होती नहीं। ऐसा क्यों हुआ? वो भी जीव है, हम भी जीव है, ऐसा क्यों हुआ? इससे आगे जाए कि ये तो मन वाले हैं, थोड़ा बहुत विचार कर सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग दो तो ये जीव होने पर भी उनकी विचार शक्ति नहीं है कोई, जिसके पास मन नहीं है उनको तो विचार शक्ति भी खो दी है, वो भी जीव है, ऐसा क्यों? तो इसका यही कारण है कि जब हमें मन मिला तो हमने हमारे आत्म कल्याण का विवेक नहीं किया, विवेक विचार नहीं करने से कुदरत की ये व्यवस्था है कि तुमको विचार विवेक करने की शक्ति मिली फिर भी तूने इसका सदुपयोग नहीं किया, तो अभी तुझे दोबारा मन मिलेगा नहीं, विचार शक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए जहाँ तक मनुष्यपना है, पूरा विवेक से आत्मकल्याण कैसे हो इस विषय में पूरा विवेक कर लेना चाहिए। अगर हम दरकार नहीं करेंगे, क्या हमारे आत्मकल्याण के विषय की उपेक्षा कर लेंगे तो मन चला जाएगा, क्या होगा? मन चला जाएगा। क्यों? कि मन दिया मिला तब तो हमने इसका कोई उपयोग नहीं किया, ये कुदरत की व्यवस्था है। लोग तो ईश्वरकर्ता को मानते हैं कि ईश्वर ऐसा कर देता है, लेकिन ऐसा करने से इनको तो कोई फायदा है ही नहीं, लेकिन ये कुदरत की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को समझ करके जो भी हमें तक मिली है उसमें हमारा काम हमें कर लेना चाहिए। हाँ वैराग्य आया इसमें। कैसे वैराग्य आया? कि हमारे आत्मकल्याण में हम इतना रस लेंगे और हमारा नुकसान होगा वहां हम रस लेंगे नहीं। तो क्यों? कि पर में रुचि जाने से हमारा उपयोग स्थूल हो जाता है, और स्थूल होकर के ऐसी परिस्थिति आएगी कि मन भी चला जाएगा, इसलिए ऐसे विषय में से मार जाएंगे। आज ही बात चलता था जी, खाना खाते कल की बात सुनी तो खाते वक्त याद आता है कि रस लेंगे तो वो भोगनी पड़ेगी। अगर हम स्वाद का रस लेते जा रहेंगे तो वेदना से हम छुटकारा पा सकेंगे नहीं, क्योंकि हमने वेदना खड़ी की और उस वेदना को भोगना अनिवार्य हो जाएगा, उसका निवारण हो सकेगा नहीं। इस प्रकार उपयोग सूक्ष्म करके आत्मा को और विभाव को पृथक किया जा सकता है। यह पृथक करने का कार्य प्रज्ञा से ही होता है। विभाव चाहे कितना भी सूक्ष्म हो, क्या चिंतन में मनन में बहुत सूक्ष्म विकल्प सूक्ष्म राग हो तो भी वो विभाव का कण है, ये उपयोग सूक्ष्म होने से पता चलता है, स्थूल उपयोग में पता नहीं चलता है। इसलिए ये पृथक करने का कार्य प्रज्ञा से ही होता है। व्रत तप या त्याग आदि भले हो परंतु वे साधन नहीं होते। देखो, क्या कोई धर्म के क्षेत्र में व्रत ले लेता है, कोई तपश्चर्या भी करने लगता है, कोई त्याग भी कर देता है, परंतु आत्म कल्याण में वो साधन होते हैं। साधन तो प्रज्ञा ही है, ज्ञान साधन है और कोई साधन नहीं है। वह कहाँ जाकर के बात ले गए, ज्ञान साधन है वहां तक आ गए। क्योंकि धर्म के क्षेत्र में आत्म कल्याण के इलाज में उपाय में जो लोग अनजान हैं वो अपनी मति कल्पना से चाहे जैसा उपाय मनमाना कर लेते हैं और सही इसके विज्ञान को साइंस को समझते नहीं हैं तो आत्म कल्याण नहीं कर पाते, अपने को नुकसान कर लेते हैं। तो ये एक जिम्मेवारी खड़ी होती है कि हमारा कल्याण सही रूप से कैसा हो इसे इसकी जानकारी करने की जिम्मेवारी हमारी है। क्या इसकी जिम्मेवारी हमें नुकसान नहीं हो, इसकी दरकार हमें लाभ कैसे हो, आत्मलाभ इसकी दरकार हमें करनी होगी, ये जिम्मेवारी हमारी है, किसी और की नहीं है। लेकिन बाप को तो बेटे को समझाना चाहिए कि नहीं, ये बाप की जिम्मेवारी है के नहीं है? जिम्मेवारी किसकी, प्रश्न ये है प्रभु भाई है कि हरेक की अपनी अपनी आपकी है। बाप कहेगा बेटा माने भी और नहीं भी माने, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। बाप ये भी कहेगा कि बेटा मैं तेरे हित के लिए बोलता हूं, क्या तुझे मेरे पर विश्वास नहीं है? क्या पाल पोस कर मैंने तुझे बड़ा किया, तो क्या तुझे मेरे पर विश्वास नहीं है क्या कि मैं तेरे नुकसान की कोई बात करूंगा? तो ऐसा भी कहेगा कि बात तो सही है आपकी, आप मेरे नुकसान करो ये तो मैं नहीं मान सकता कि आप मेरे नुकसान की कोई बात करते होंगे, लेकिन मुझे जचती नहीं, मैं क्या करूं, इसका मैं क्या करूं, मुझे जचती नहीं है तो इसका कोई इलाज हो सकता नहीं है। और आदमी 8 साल के बाद क्या कोई भी मनुष्य जन्म लेने के बाद 8 साल का होता है उसकी अपने सुख दुख के विषय में विचार करने की ताकत आ जाती है, ये भगवान का कथन है शास्त्र में। 8 साल का बच्चा हो बच्ची हो तो सम्यक दर्शन और धर्म की सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, आत्म शांति की प्राप्ति हो कर सकता है। तो अपनी शांति अशांति कैसे पैदा हो इस विषय में जानकारी करने की अपनी जिम्मेवारी है, किसी और की नहीं है। और ज्ञान ही साधन है, उसमें कोई साधन नहीं है। ऐसे बिना ज्ञान कुछ भी कर ले आत्म कल्याण हो जाएगा नहीं। अब एक बहुत सुंदर बात करते हैं आखिर के पैराग्राफ में, ये बात बहुत सुंदर किया है कि स्वभाव की महिमा से पर पदार्थों के प्रति रस बुद्धि सुख बुद्धि टूट जाती है और स्वभाव में ही रस आता है, दूसरा सब निरस लगता है। ये बैराग्य आया
लेकिन कब? ऐसे तो बिना समझे त्याग करते हैं तो क्या वो वैराग्य है क्या? त्याग करते कि नहीं, दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, ये कोई वैराग्य है क्या? स्वभाव की महिमा है ये बात है। स्वभाव की महिमा कब आ रहे हैं? स्वभाव की महिमा कब आवे कि स्वभाव को पहचाने तब। स्वभाव में शांति है, स्वभाव में सुख है, अनंत अनंत आनंद है, अनंत अनंत ज्ञान भी भरा है। ऐसे ऐसे अनंत दिव्य गुणों का भंडार जो है वो स्वभाव है। अनंत दिव्य गुणों का भंडार को एक लब्ज में कहे, एक शब्द में, तो उसको स्वभाव कहने में आता, आत्म स्वभाव। उसको पहचाने बिना उसकी महिमा आती नहीं। और ये पहचान करने के लिए बाह्य साधन है सत्संग, शास्त्र का स्वाध्याय, ये बाह्य साधन है। अंतरंग साधन हमारे भावों को अवलोकन करके परिचय करना, भेद ज्ञान करना, ये अंतरंग साधन है। अकेले बाह्य साधन से भी काम होने वाला नहीं है, चाहे जिंदगी भर शास्त्र पढ़ते रहे, ये भी बेकार हो जाएगा। अगर अंतरंग साधन नहीं किया तो वो फर्स्ट स्टेज है अवलोकन, भेद ज्ञान उसी का ही दूसरा स्टेज है। मैंने अवलोकन करते करते स्वभाव विभाव की परख हो जाती है, और परख होने से भेद ज्ञान चालू हो जाता है। तो जो स्वभाव है वो विभाव नहीं, विभाव है तो स्वभाव नहीं, ऐसा। तो सीधा भेद ज्ञान जिसको नहीं होता है, पर अभी ये परिस्थिति है मुमुक्षुओं के हमारे यहाँ कि भेद ज्ञान की बातें चलती हैं, विचार चलता है, प्रयोग नहीं चलता है। और प्रयोग नहीं चलता है, जब ऐसा जानने का मिला कि ये प्रयोग की चीज प्रयोग से ही साध्य होती है, विचार से और बातों से नहीं, तब प्रयोग कैसे करना, ये समस्या आती है। इसके लिए कहते हैं कि अवलोकन शुरू करो, ये भी एक प्रयोग का फर्स्ट स्टेज है। अवलोकन खुद ही प्रयोग है, लेकिन वो प्राइमरी स्टेज में है। सेकंड स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में ये वेद विज्ञान चालू हो जाएगा प्रयोग, ऐसी बात। कारण कार्य है, जिसको यथार्थ निर्णय होता है वो कारण है, वो यथार्थ निर्णय अवलोकन का टोटल है। अवलोकन और वेद ज्ञान का प्रयोग से निर्णय की भूमिका बनती है, और निर्णय पूर्वक फिर वेद ज्ञान चलता है तो इसका टोटल आता है स्वानुभव, निर्विकल्प स्वानुभव है, ऐसा कार्य कारण का संबंध है। ऐसा है कि स्वरूप निर्णय करना कैसे, तो इसके लिए हमने तो ये निर्धान दर्शन की पगडंडी में आखिर का प्रकरण 30 पेज का लिखा है कि निर्णय करने वाला गलत निर्णय करेगा तो कैसे हो जाएगा गलत निर्णय, और सही निर्णय कैसे करना। तो सही निर्णय में वो बात है कि अपने ज्ञान का ज्ञान स्वयं अपने आप का जब अवलोकन करते हैं अपने आप में, तो उसको पता चलता है कि मेरे प्रदेश प्रदेश में ज्ञान सतत बार आता रहता है, एक सेकंड भी ज्ञान को मैं रोक सकता नहीं। चालू ही चालू रहता है। अब अनंत काल से ये ज्ञान चालू रहा तो भीतर में कितनी डिपॉजिट होगी भंडार में, इसका अंदाजा बैठता है कि अनंत ज्ञान भरा है। ये जो ज्ञान का प्रवाह है, जातृत्व धारा ऐसा बोलते लिखा है, ये सत्ता में मकल आ गया जातृत्व धारा, तो ये सतत बहने वाला ज्ञान, भीतर में से निकलने वाला ज्ञान, इसकी सततता से देखते हुए अवलोकन करते हुए ये अंदाज बैठता है कि भीतर में अनंत ज्ञान भरा है, तो वो हर हमेशा बाहर आता रहता है, तो उसकी सामर्थ्य की अनंतता भाषित होती है। एक दूसरा फैक्टर और भी है निर्णय के काल में कि हमारे ज्ञान से हमने अनेक ज्ञेय का अनुभव किया, वेदन किया, जैसे बहुत से स्वाद लिए खाने के, बहुत से वेदना का अनुभव किया, जब जब हमें शरीर की वेदना आदि हुई तब वेदन किया, ठंडी गर्मी भी हर सीजन में बहुत सा वेदन किया, और चिंता उपाधि टेंशन में भी काफी रहे, हजारों गे के बीच में ज्ञान रहता हुआ भी ज्ञान में कौन सी चीज रही, ज्ञान स्वभाव से निर्लेप है। क्या है, जैसे हमारी वो जीव है ना, जीव हजारों स्वाद लेते रहो आप जीव से, कौन सा स्वाद वहां टिका, आम खाई तो आम का स्वाद टिका क्या, मिर्च खाई तो उसका स्वाद टिका क्या, कड़वी दवा खाई तो उसका स्वाद रहा क्या, जब एक भी स्वाद स्वाद लेने वाले को वहां रहते नहीं, रहता नहीं, स्वाद लेने का तो और जगह है ही नहीं, एक जीव से ही स्वाद लिया जाता है, लेकिन एक भी स्वाद वहां टिकता नहीं। वैसे अनंत ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान ज्ञेय शून्य रहता है हमेशा। कैसा रहता है, ज्ञेय शून्य रहता है, निर्लेप है वो स्वभाव से, तो स्वभाव की असंगता है, निर्लेपता है, वो भी अनंत है। कितनी है, अनंत है। ये दो बात अवलोकन से अनुभव गोचर जब होती है तब ज्ञान का अनंत सामर्थ्य और सुख का अनंत सामर्थ्य, सुख का भंडार का पता चलता है, क्योंकि ज्ञान अकसाई स्वरूप है। इतना कसाई हुआ हमारे को, कभी गुस्सा हुआ, कभी हम रड़े, कभी हम हंसे, कभी कितने मेले भाव हुए, कुछ भी हुआ, लेकिन ज्ञान में क्या रहा, निगोल में गया, एक इंद्रिय हुआ, दो इंद्रिय हुआ, पंचेंद्रिय हुआ, कुछ भी हुआ, ज्ञान में क्या रहा। ज्ञान एक साय स्वरूप है, ज्ञान में कोई आकुलता दुख का अस्तित्व भी रहता नहीं, नारक का आनंद दुख होगा अभी स्मरण में भी नहीं आएगा, है तो नहीं लेकिन उसकी स्मृति भी नहीं आएगी, उतना ज्ञान निर्लेप है। ऐसा एक सुख का भंडार भी हमारा आत्मा में भरा है, ऐसा अनुभवांश, कैसे, विचार से नहीं, अनुभवांश से निश्चय होता है, तब ये सम्यक दर्शन का कारण बनता है, तब महिमा आती है, स्वभाव की महिमा तब आती है। जितना महिमावंत है उतना महिमावंत प्रतिभाषित होता है, तब उसकी महिमा आती है, और जब स्वभाव की महिमा आती है तो पर पदार्थ के प्रति रस बुद्धि टूट जाती है। बुद्धि मैंने अभिप्राय, ये अभिप्राय का प्रकरण है। बुद्धि मैंने यहां अभिप्राय कि पर पदार्थ में रस आवे वो अभिप्राय खत्म होता है। रस थोड़ा आता है लेकिन अभिप्राय विरुद्ध अभिप्राय नहीं है। और सुख थोड़ा लगता है लेकिन अभिप्राय नहीं है। सुख बुद्धि टूट जाती है। खाने में पीने में पंचेंद्रिय के किसी भी विषय में सुख नहीं है, ऐसा एक अभिप्राय खड़ा हो जाता है। ये अभिप्राय होने से स्वभाव में रस आने लगता है और जगह सब निरस लगती है, उदासीनता हो जाती है, उपेक्षा हो जाया करती है, करनी पड़ती नहीं है, हो जाया करती है। हाँ, सातावेदनि के टाइम में भी भेद ज्ञान चलता है, इसलिए ऐसा होता है। क्या कि जो स्वभाव में सुख है वो सातावेदनि से कोई भिन्न प्रकार का सुख की बात है। सातावेदनि में सुख नहीं है किंतु सुखाभास रूप दुख है, जो सुखाभास रूप है। सुख नहीं है, दुख है वहां पर। लेकिन कब पता चले कि एक साय स्वभाव को जाने सब, वरना पता नहीं चले। हाँ, परिचय से जानना, अनुभवान से जानना, प्रयोग से जानना, विचार से जानना वो बात नहीं है। विचार से तो बहुत जाना, लेकिन वो बात पर्याप्त नहीं है। आगे बढ़ना चाहिए, जान करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कौन सा साधन है? दृष्टि साधन है। तो ऐसा कहा कि वहां दृष्टि नहीं हुई है, इसलिए ज्ञान मिथ्या है। मिथ्या ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, ऐसा कहने का अभिप्राय है। तो मिथ्या ज्ञान में भी दो प्रकार है। क्या? मिथ्या ज्ञान में भी एक परलक्षी और एक स्वलक्षी। तो स्वलक्षी ज्ञान होता है इससे कम आगे चलता है, और परलक्षी ज्ञान 11 अंक का होवे तो भी निष्फल जाता है, तो सफल नहीं होता। इस तरह से वो बात जी। स्वलक्ष्य मैंने आत्मलक्षी, स्वलक्षी ज्ञान मैंने आत्मलक्षी ज्ञान है। जहां तक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, स्वानुभव नहीं हुए, वहां तक तो ज्ञान की जाति मिथ्यात्व की है। देखिए, विषय थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन एक ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की जाति क्या, ज्ञान की शक्ति क्या, ज्ञान की गति क्या और ज्ञान की स्थिति क्या, ये चार पहलुओं को समझना चाहिए। ये अलग पहलू है। जाति मिथ्या है, लेकिन इसकी गति में फर्क हुआ। क्या फर्क हुआ? कि मेरा आत्मकल्याण कहाँ है, यही मेरा प्रयोजन है, यही मेरा मतलब है। मेरा प्रयोजन छोड़ करके मुझे मेरा ज्ञान का कहीं भी प्रयोग करना नहीं है, खर्च करना नहीं है। मेरा ज्ञान का खर्च मैं जहाँ करूँगा, वहाँ जहाँ मेरा आत्मकल्याण हो। जहाँ मेरा आत्मकल्याण नहीं हो, मेरा ज्ञान का मुझे खर्च करना नहीं है। ये प्रारंभ में स्वलक्ष्य ज्ञान होता है, और इस प्रारंभ से जब हर जगह आत्म कल्याण की मुख्यता ज्ञान में हो जाती है, तब स्वरूप निश्चय होता है, सब स्वरूप की पहचान होती है, उसमें अनंत सामर्थ्य की पहचान होती है, तब तो इतना लक्ष्य उसका हो जाता है कि उस लक्ष्य को हम हटा सकते हैं नहीं। दरिद्री के घर में से दौलत निकलने से इसका लक्ष्य और जगह रहने वाला नहीं है। फिर तो हम रहे शांति के दरिद्री, बहुत अशांति हमें भोगने में आई है या भोग भी रहे हैं। अब शांति का समुद्र हमारे में देखा, हमने क्या देखा, शांति का सरोवर है। आत्मा तो शांति का सरोवर है ना। आपके यहाँ इधर हैदराबाद में बड़ा सरोवर, ऐसा भीतर में इससे भी बड़ा सरोवर है शांति का, शीतलता भरी हुई है। उसका जब लक्ष्य हो जाता है, उसकी पहचान हो जाती है, तो फिर और जगह लक्ष्य जाता नहीं है, उसको भी ईश्वर लक्ष्य कहते हैं। और इस सरोवर की शांति अनुभव में आई, किनारे पे छालक लगती है ना, बहुत पानी भरता है तो सड़क पर भी पानी आ जाता है, तो पर्याय के किनारे में जब शांति स्वानुभव में आई, फिर तो कहीं और अशांति होने में रस आएगा नहीं। जो भी अशांति का कारण हो वो उसमें उदासीनता हो जाएगी, उसको छोड़ने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। कितना पैसा में कितनी शांति मिले, हर चीज पैसे से मिलती है, ऐसा दुनिया में कहते हैं लोग। हम कहते हैं कि कितना पैसे में कितनी शांति मिले, लाख रुपये में 100 ग्राम मिलती है क्या, या 10 ग्राम मिलती है, या 1 ग्राम मिलती है क्या है? हीरा तो लाख रुपये का कैरेट वाला भी होगा, लेकिन शांति है क्या, वो ऐसे मिलती नहीं है। तो इसलिए शांति को बेच करके हमें क्या लेना है, अब क्या विचार करना है, हमारी शांति को बेच करके हमें क्या लेना है इस जगत में से, कि जो शांति का सरोवर हमारे में भरा है उसको हमें कहीं बेचना नहीं है। इसकी उपलब्धि करके हम शांति में रहे, यही में हमारी भलाई है, बाकी कहीं भी हमारी भलाई नहीं है। ये जो धर्म है वो सुख शांति के लिए है। धर्म का कोई हेतु नहीं हो सकता सिवा सुख शांति, और इसी का विज्ञान है, उसको हम शास्त्र ज्ञान कहते हैं, जिसमें इसका विज्ञान है। तो यहाँ कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है तो भीतर में अंतर में राग और ज्ञान स्वभाव और विभाव के बीच में सूक्ष्म संधि है, वो नजर आती है। नजर आती है तो वहां प्रज्ञा श्रेणी को पटकना होता है, नजर ही नहीं आवे तो प्रज्ञा श्रेणी को कहां पटकेगा, प्रज्ञा श्रेणी नहीं है इसके पास, तो प्रज्ञा ही नहीं है, फुल उपयोग हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि स्वभाव को पहचानो, उपयोग को सूक्ष्म करो, और भीतर में जो शांति भरी है इसकी उपलब्धि करके सिद्ध पद की तैयारी करो। इसका नतीजा क्या है, सिद्धालय में जाना, नमो नमो लोए सब सिद्धानम कहते हैं ना, पंच परमिष्ठ में नमो सिद्धानम कहते कि नहीं, ये सिद्धालय की तैयारी है।